السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف دل کی بات. سب سے پہلے تو میں اپولوجائز کرنا چاہوں گا، میں پچھلے ایک مہینے سے غائب تھا. آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے مجھے میسیجز بھی کیے کہ یار مدن بھائی کدھر غائب ہیں، کوئی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی، وہ سب کچھ. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو اپولوجائز کہ میں غائب تھا کیونکہ میں رشیا گیا ہوا تھا. آئی نو، ویری ویئرڈ، ویری رینڈم. آج کل کے زمانے میں کون رشیا جاتا ہے کنسیڈرنگ کہ وہاں پہ سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں، حالات بھی خراب ہیں. بٹ اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اس ویڈیو میں، میں کیوں تھا وہاں پر، کیا میں نے وہاں پہ جا کے سیکھا. بٹ جسٹ وانٹ ٹو لیٹ یو نو کہ آئی ایم بیک، اور جو ہماری ریگولر پروگرامنگ ہے منڈے وینسڈے فرائیڈے کی، وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ اب شروع ہو جائے گی. رشیا میں گیا ہوا تھا کیونکہ وہاں پر ہو رہا تھا ورلڈ یوتھ فیسٹیول، جو کہ ایک بہت بڑے اسکیل کا ایک ایونٹ تھا جس میں تقریباً 20,000 لوگ پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے. اور وہاں پر اس ایونٹ کے اوپر سیملٹینیسلی کانسرٹس بھی ہو رہے تھے، آرٹ اینڈ کلچر کی ایگزیبیشنس بھی ہو رہی تھیں، ٹاکس، ورک شاپس، کمپٹیشنز. اٹ واز جسٹ کریزی. میں ڈیٹیل میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. سو مجھے اس ایونٹ کے بارے میں ڈسمبر میں پتا لگا، جب میں نے ان کی ویب سائٹ دیکھی، پتا لگا کہ یار اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ سلیکٹ ہو گئے تو ایک فلی فنڈیڈ ٹرپ آپ کو ملے گا جس میں آپ کو کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا. ٹکٹنگ، یو نو، اسٹےنگ، اکوموڈیشن، کھانا پینا، سب کچھ ان کے سر کا درد ہوگا. اور میں پرسنلی بہت انٹرسٹڈ تھا رشیا کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ رشیا جو ہے وہ یو نو بچپن سے اب تک ہم نے بس ہالی ووڈ میں دیکھا ہے. ہمیں پتا ہے کہ یار وہ واڈکا پیتے ہیں اور وہ ڈرنک ہوتے ہیں اور وہ گنے چلاتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ جب میں دبئی موو ہوا تو یہاں پر مجھے بہت زیادہ رشین سے ملنے کا موقع ملا، کیونکہ یہاں پہ رشینس بھی کافی سارے اس ٹائم پہ موو ہوئے تھے آفٹر دا یوکرین وار. اینڈ آئی فاؤنڈ دا رشینس دیٹ آئی میٹ ہیئر ٹو بی ویری ویری ڈفرنٹ دین واٹ آئی ہیڈ ایکسپیرینسڈ ان موویز. سو میں آلریڈی بڑا انٹریگ تھا کہ اگر فلموں نے مجھے رشین لوگوں کو غلط دکھایا ہے تو رشین کلچر، رشین سوسائٹی کیسی ہوگی، اسپیشلی بیکاز وہی اسٹیریوٹائپس اس سوسائٹی کے بارے میں ایگزسٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ سینکشنس لگی ہوئی ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، وہ لوگ کمیونسٹ تھے ایک زمانے میں، وہ بڑے غریب ہیں، ان کا تو سروائیو کرنا بالکل مشکل ہوا ہوا ہے. ایٹ لیسٹ ویسٹرن میڈیا آپ کو یہی بتاتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یار وہاں تو بڑا جو ہے نا اسٹرکٹ قسم کا ماحول ہے اور وہاں انٹیلیجنس آپ کے سر پہ ہوتی ہے اور آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کچھ بھی بولنے کا، اور یو نو فریڈم بہت کرٹیلڈ ہے. سو آئی واز لائک یار ان اے کنٹری جہاں پر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، جہاں پہ فریڈم کرٹیلڈ ہے، جہاں پر ان کے حالات بہت خراب ہیں، وہ لوگ 20,000 لوگوں کو پوری دنیا سے بلا کر کیا کریں گے. سو اٹ واز ویری انٹریگنگ. میں نے سوچا میں چلو اپلائی کر دیتے ہیں، اپلائی کرنے میں کیا حرج ہے. اللہ کرنا ایسا ہوا کہ فیبروری میں پتہ لگا کہ جی میں سلیکٹ ہو گیا ہوں، اور میرے ساتھ تقریباً 200 اور پاکستانی سلیکٹ ہوئے اس کے اندر. اور پھر 29 فیبروری کو ہم سب فلائی کر کے گئے سوچی، جو کہ ان کا ساؤتھ ویسٹرن سائڈ کے اوپر ایک شہر ہے، وچ از کنسیڈرڈ دیئر موسٹ وارمسٹ شہر. اب رشیا کو سمجھیں کہ رشیا از اے این ایکسٹریملی کولڈ کنٹری. اٹس دا لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، بٹ اٹس آلسو یو نو ون آف دا کولڈسٹ ریجن ان دا ورلڈ. میں ماسکو میں تھا یا ایک اور میں جگہ پہ گیا خبروسک میں، جہاں پر -20 degrees رات کو ہوتا تھا. مطلب اگر آپ رات کو باہر نکلیں اور آپ نے گلوز نہ پہنے ہوں تو آپ کے ہاتھ جمنا شروع ہو جاتے تھے اور بہت پینفل ہوتا تھا. یو نو اس انوائرمنٹ میں سوچی واز دیئر لیسٹ کولڈسٹ، لائک دا وارمسٹ سٹی، جہاں پر رات کو میکسیمم مارچ کے مہینے میں رات کو جو ہے وہ -1-2 ہو رہا تھا، اس سے زیادہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا. اٹ واز اسٹل کولڈ، لائک پاکستان میں اسلام آباد میں جیسا ڈسمبر میں ہوتا ہے ویسی ٹھنڈ تھی، کچھ بہت زیادہ نہیں تھی. خیر ہم سوچی پہنچے وہاں پر، ہمارے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے لائک آئی مینشنڈ کہ 10,000 لوگ پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے، 10,000 لوگ رشیا سے آئے ہوئے تھے، وہ تمام لوگ بھی اکٹھے ہوئے اس شہر میں. اور پھر 1st to 7th March تک یہ فیسٹیول ہوا. فیسٹیول اٹ سیلف جو ہے وہ ہر 5 years بعد ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم 2017 میں ہوا تھا، سوچی میں ہی ہوا تھا، اس میں تقریباً 190 countries سے لوگ آئے ہوئے تھے. اس بار چونکہ جنگ چل رہی ہے، ویسٹ سے پھٹا چل رہا ہے رشیا کا، تو جو ویسٹرن الائڈ کنٹریز ہیں، یعنی کہ ویسٹرن یورپ ہو گیا، نارتھ امریکہ ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، یہ کنٹریز نہیں تھیں. سو تقریباً 140 countries کے نمائندے یا یوتھ نمائندے وہاں پر آئے ہوئے تھے، جس میں سے پاکستان سے 200 لوگ تھے، برازیل سے 300 لوگ تھے، ارجنٹینا سے 250 لوگ تھے، چائنا، انڈیا سے بہت بڑی ڈیلیگیشنز آئی ہوئی تھیں، اسی طرح 350-350 لوگوں کی، اور امنگسٹ مینی ادر کنٹریز، افریقہ سے بہت سارے لوگ تھے، ساؤتھ امریکہ، پیسیفک ایشیا. بہت انٹرسٹنگ تھا بیکاز نارملی جب آپ کانفرنسز پہ جاتے ہیں، ایونٹس پہ جاتے ہیں، پرٹیکولرلی اس اسکیل کے ایونٹ پہ جاتے ہیں، تو آپ کو فور فرنٹ پہ ملتے ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹریز یا ڈیولپڈ کنٹریز کے لوگ، آسٹریلیا، امریکہ، جرمنی، اس کے لوگ سامنے سامنے ہوتے ہیں، ان کا کانفیڈنس بھی ڈفرنٹ ہوتا ہے، یہ لوگ یو نو ایک اسکیل ہی فرق ہوتا ہے. اس بار کیا ہوا کہ چونکہ یہ سارے تھے نہیں، زیادہ گلوبل ساؤتھ اکٹھی ہوئی ہوئی تھی، تو آپ کو نظر آیا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ فور فرنٹ پہ ہیں، وہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، ان سے آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کا کانفیڈنس آن اندر لیول ہے. تو وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ پوری گلوبل ساؤتھ، پورا جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ اکٹھا ہوا ہوا تھا. And they were talking about science, technology, collaboration, the new world order, the world order that will emerge agar America ki hegemony khatam ho, in a very subtle way. Yani ki ye nahi hota ki sab baithe hain aur baithe keh rahe hain ki yaar you know what, ye Americans bade bure hain. Unhone zyada baat bhi nahi ki Americans ke bare mein. Unhone baat ki ki hum youthful hain, hum grow kar rahe hain, hamare andar energies hain, hum kaise collaborate karke science, education, technology ke andar you know duniya ko badal sakte hain. So it's very interesting what the Russian government has created in lieu of this platform called the World Youth Festival. Yahan par main ek shout out dena chahunga Future Team Pakistan ko, main unki link bhi dal dunga niche. Ye log official partners hain World Youth Festival ke. Not just World Youth Festival, basically Russia mein bahut sare different events hote hain, un tamam events ko ye log represent karte hain aur inhone pura ye manage kiya hua tha hamare end ke upar. Russian government ne pay kiya hua tha lekin management sari inki thi, inhone sara coordinate kiya, groups banaye, hame wahan pe facilitate kiya. So shout out to them, they did a phenomenal job. Again, ये सारा एक्सपीरियंस मैंने डे टू डे कैप्चर किया हुआ है, मेरे इंस्टाग्राम पे आएगा इन अ कपल ऑफ वीक्स. तो अगर आपने देखना है कि विजुअली कैसा था, एक्सपीरियंस क्या था, यू नो व्हाट ऑल वेंट डाउन, वो सारा का सारा उसमें आएगा ऑन माय इंस्टाग्राम, यू कैन चेक दैट आउट लेटर. और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपने रशिया डिस्कवर करना है और आने वाले वक्त में कोई इवेंट होता है या कोई फेस्टिवल होता है या कोई कॉन्फ्रेंस होती है, उस पर जाने की अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो फ्यूचर टीम पाकिस्तान को चेकआउट कर लें, उनकी लिंक नीचे है. यू नो वो सारा पब्लिश करते रहते हैं जो भी नई चीज़ आ रही है, सो यू कैन चेक दम आउट एज वेल. बट थोड़ा सा ओवरव्यू की बात कर लेते हैं. जो पहले 7-8 दिन थे जब मैं इस फेस्टिवल पे था, तो मैंने क्या वहाँ पे सीखा, क्या मैंने अंडरस्टैंड किया. पहली चीज़ जो मैंने अंडरस्टैंड की, वो मुझे फ्लेवर मिला दुनिया का कि 10 साल बाद की दुनिया कैसे होगी. मुझे पता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जब देख रहे होते हैं, दुनिया को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो उनका वही फ्रेमवर्क होता है जो कि उन्होंने देखा है, जो कि उनका रिसेंट हिस्ट्री में उनको नजर आया है कि जी अमेरिका जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है. अमेरिका आता है और अमेरिका बताता है दुनिया कैसी होनी चाहिए, है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फ्री वर्ल्ड होना चाहिए, है उनका अपना एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, और अगर आप उससे नहीं इत्तेफाक करेंगे तो फिर आप इराक की तरह या लिबिया की तरह या सीरिया की तरह फुड़का दिए जाएंगे. तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है और उसी अंडरस्टैंडिंग पे हम चलते हैं और हम उससे लेफ्ट राइट ज़्यादा सोचते नहीं हैं. बट इस फेस्टिवल पे जाके जब मैंने इंटरेक्ट किया विद ब्राज़ीलियंस, जब मैंने इंटरेक्ट किया विद अर्जेंटीनियंस, जब मैंने इंटरेक्ट किया विद यू नो चाइनीज़ एंड अफ्रीकन्स, वहाँ मुझे रियलाइजेशन हुई कि यार एक तो पहली बात जो हमारा पाकिस्तानियों का पर्टिकुलरली बट ओवरऑल इंग्लिश स्पीकिंग दुनिया का जो फ्रेमवर्क है ना, जिसमें हम सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग दुनिया को देखते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया को कंज्यूम करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग न्यूज़ को सुनते हैं, तो हमें लगता है कि दुनिया बस यही है और इसी में जो हो रहा है वो हो रहा है. हालांकि वहाँ पर मैंने देखा कि रशियन स्पीकिंग दुनिया कितनी बड़ी है, मतलब सिर्फ रशिया नहीं है, पूरा सेंट्रल एशिया, जितनी भी आपकी ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जो द स्टान्स कहलाते हैं, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये तमाम वहाँ पर रशियन स्पीकिंग है. जो आपका ईस्टर्न यूरोप है, बेलारूस, सर्बिया, स्लोवेनिया, मल्डोवा, रोमेनिया, ये तमाम ममालिक के जो लोग आए हुए थे ये भी रशियन बोल रहे थे. और चूंकि लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होती है, वो लोगों को बाइंड टुगेदर करती है, वो यू नो एक कनेक्ट ड्रॉ करती है, तो उसमें देख के आपको ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये पूरा एक बहुत बड़ा रीजन है, इसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और ये बिकॉज ऑफ देयर सेम लैंग्वेज देयर कोलैबोरेटिंग, देयर डूइंग इंटरेस्टिंग थिंग्स, दुनिया इधर की उधर हो जाए वो अपनी एक दुनिया बना के बैठे हुए हैं और उस दुनिया में वो ग्रो कर रहे हैं. साथ ही फिर आप साउथ अमेरिकन से इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर स्पेनिश स्पीकिंग और पोर्चुगीज स्पीकिंग आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, जो कि सिमिलरली फ्रेंच, स्पेनिश एंड पोर्चुगीज स्पीकिंग बहुत सारे अफ्रीकन्स हैं, उनका अपना सिस्टम चल रहा है, वो अपनी कोलैबोरेशंस चल रही हैं, वो एक दूसरे की कंट्रीज़ में जाके यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ से ग्रो करते हैं, उनका वर्ल्ड व्यू ही फ़र्क है. और जब आप इन लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यार आप लोगों की दुनिया में क्या चल रहा है, आप लोग फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं, तब आपको समझ आता है कि ना सिर्फ दुनिया बहुत रैपिडली बदल रही है, बल्कि जो फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड है वो यूरोप, अमेरिका या ऐसी कंट्रीज, जापान हो गया, ऐसी कंट्रीज जहाँ के लोग बुढ़े हो चुके हैं और वो मरने वाले हो रहे हैं, वो डिफाइन नहीं करेंगे. फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड डिफाइन होगा यूथ से, जो प्रेवलेंट है साउथ अमेरिका में, जो प्रेवलेंट है अफ्रीका में, जो प्रेवलेंट है साउथ एशिया में, और यूथ की थॉट प्रोसेस है कि वो किस चीज़ को राइट एंड रॉन्ग समझती है, उनको क्या लगता है कि आने वाली दुनिया कैसी होनी चाहिए. और इस चीज़ को रशियंस ने बहुत स्मार्टली समझा. अगेन ये इवेंट अगर कोई मुझसे पूछे ऑब्जेक्टिवली कि था क्या, बेसिकली इट वाज अ सॉफ्ट पावर एक्सरसाइज. रशिया जो है वो ग्लोबल साउथ को कंसोलिडेट कर रहा था, वो सबको इकट्ठा कर रहा था और एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहा था. तो बेसिकली उन्होंने किया ये कि पूरी दुनिया से जो यूथ लीडर्स हैं, जो कि ऐसे लोग हैं, और सिर्फ मीडिया वाले नहीं, मतलब मैं और मेरे इर्द गिर्द बहुत थोड़े ऐसे थे जो इन्फ्लुएंसर्स हो गए या मीडिया के लोग हो गए जो कि वहाँ पर गए हुए थे. ज़्यादा जो लोग थे वो बिजनेस के थे, वो लॉयर्स थे, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स थे, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग थे, डिफरेंट थॉट लीडर्स थे जिनको उन्होंने बुलाया, उन्होंने एक्सपीरियंस कराया रशिया, रशियन कल्चर, बट ना सिर्फ रशिया बल्कि उन्होंने ग्लोबल साउथ के नैरेटिव को सेलिब्रेट किया और उठाया. What do I mean by global south ka narrative? Dekhen, as Pakistanis, as Muslims, as Asians, and then as people who live in the third world, there are certain things jo ke hum feel karte hain, lekin in a Eurocentric world, Eurocentric world se murad ye hai ki in a world jo ke America aur West chalata hai, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि ना या तो हम ओपनली बोल नहीं सकते या बोलते हुए डरते हैं या हम सोचते भी हैं तो हमें लगता है यार शायद कंजर्वेटिव सोच है ये, दखियानूसी सोच है, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। वहाँ पर ये थॉट्स ना सिर्फ बोली जा रही थी बल्कि ओपनली सेलिब्रेट की जा रही थी। फॉर एग्जांपल वहाँ पर उन्होंने एक पूरा दिन सेलिब्रेट किया फॉर एग्जांपल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली। अब फैमिली एक ऐसी चीज़ है जो कि इनहेरेंटली ग्लोबल साउथ और ईस्टर्न वैल्यू है कि यहाँ पर हम जो है बहुत ज़्यादा यू नो आपस में ख़ानदान बहुत जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के अंदर अमल दखल होता है, एक दूसरे की यू नो चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं जो कि काफ़ी दफ़ा अनोइंग भी हो जाता है, लेकिन ये इनहेरेंटली एक ईस्टर्न वैल्यू है। वेस्ट के अंदर मोस्टली इंडिविजुअलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है, वहाँ पे हर कोई जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी स्पेस रखता है और दूसरे से स्पेस एक्सपेक्ट करता है, दूसरे को भी स्पेस देता है। ठीक है, उनके रहने का ये स्टाइल है, बट समहाउ ये जो उनके रहने का स्टाइल है वो हमें कॉन्स्टेंटली सबकॉन्शियसली बताया गया कि वाज द मोर डेवलप्ड स्टाइल ऑफ लिविंग, वाज द मोस्ट मोर एडवांस्ड स्टाइल ऑफ लिविंग। एंड समहाउ अगेन ये बड़ा सबकॉन्शियस है, बट हमारे यहाँ हम जब अपने स्टाइल ऑफ लिविंग को देखते हैं तो हम कहते हैं यार ये क्या प्रिमिटिव है, कंजर्वेटिव है, दखियानूसी है। तो जब वहाँ पर फैमिली और फैमिली वैल्यूज़ की बात हुई तो बड़ा अच्छा लगा, सिर्फ हमें अच्छा नहीं लगा, साउथ अमेरिकन को बड़ा अच्छा लगा, अफ्रीकन को बड़ा अच्छा लगा। फिर इसी तरीके से वहाँ पर जो है वो आप फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे लग रहे थे पूरे फेस्टिवल के ऊपर, फ़लस्तीन की पूरी रिप्रेजेंटेशन आई हुई थी, इसराइल से लोग जो अरब्स को उन्होंने सेलेक्ट किया था उनको उन्होंने फ़लस्तीन के बैनर के अंडर वहाँ पर बुलाया, जो कि अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग था और एक ऐसी चीज़ थी जो कि इस वक्त इन अ वेरी वेरी टर्बुलेंट टाइम पूरे ग्लोबल साउथ को इकट्ठा करके रखी हुई है। फिर वहाँ पे जब मैंने लोगों से डिस्कशंस की और जो डिफरेंट कंट्री से आए हुए थे तो मुझे कॉन्स्टेंटली ये सुनने को मिल रहा था कि लोग तंग आए हुए विद द प्रिवेलिंग वर्ल्ड ऑर्डर जो कि अमेरिकन लेड है, जो कि अनफेयर है, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर यू नो पीस एंड डिवेलपमेंट एंड कोलेबोरेशन की बात नहीं हो रही, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्लोबल साउथ अनफॉर्चुनेटली गरीब है और उसको गुरबत से निकलने के मौके नहीं दिए जा रहे, उसको डेवलपमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। तो उसका एहसास जो था वो बड़ा वाइडली मुझे लोगों में नजर आया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। अगेन इसके अंदर आपको जो ब्रिक्स है अगर आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और फिर ब्रिक्स प्लस भी आ गया है जिसमें सऊदी अरब, ईरान एंड आई थिंक अर्जेंटीना भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उसकी इंपॉर्टेंस का आपको एहसास होता है, जिसके बारे में मैं मजीद आगे बात करूंगा इन अनदर वीडियो। बट दैट वाज द वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल जहां पर डिफरेंट टॉक्स थी, डिफरेंट इवेंट्स थे, डिफरेंट वर्कशॉप्स थी और ओवरऑल एक सेलिब्रेशन थी नौजवानों की, एक सेलिब्रेशन थी ग्लोबल साउथ की, एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म था जहां पर लोग इकट्ठे होकर अपने आइडिया शेयर कर रहे थे, नेटवर्किंग कर रहे थे और साथ साथ बहुत एक्सटेंसिवली रशियन कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे थे। अच्छा 20,000 लोगों को तो उन्होंने 1 मार्च से 7 मार्च तक इकट्ठा किया हुआ था, बट उन 20,000 में से 2,000 लोगों को उन्होंने फर्दर आगे रशिया में रखा और उन्होंने कहा कि हम आपको किसी डिफरेंट डिफरेंट इलाके में लेकर जाएंगे, जिसमें से मुझे वो लेकर गए खबरोव्स्क जो कि बेसिकली बिल्कुल फार ईस्ट के अंदर जापान के बॉर्डर के साथ एक प्रोविंस है, उसके अंदर एक शहर है जिसमें वो मुझे लेकर गए। और ये आप अंदाज़ा लगाएं इतना दूर है और रशिया इतना बड़ा है कि जब मैं सोची में था और जब मैं मॉस्को में था तो जो मॉस्को और खबरोव्स्क है उसके दरमियान 8 घंटे का टाइम डिफरेंस था, मतलब एक ही कंट्री है और उसके दरमियान 8 घंटे का टाइम डिफरेंस। और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर जहाँ पे सोची में -1 था तो खबरोव्स्क में तकरीबन -20-25 के लगभग मिनिमम टेम्परेचर जाता था। दिन के वक्त भी वहाँ पर यू नो बर्फबारी हो रही है या यू नो आइस फ्रॉस्ट है, आप बाहर ज़्यादा देर टाइम गुजार नहीं सकते। ये जो सेकंड लेग थी ट्रिप की इसको उन्होंने रीजनल प्रोग्राम का नाम दिया था, जिसमें बेसिकली इसका टोटल मकसद सिर्फ ये था कि आपने जाके रशिया को और रशियन कल्चर को एक्सप्लोर करना है और बहुत इंटीमेटली एक्सप्लोर करना है। मतलब आपको वो खबरोव्स्क एक बहुत छोटा सा रीजन है, बहुत अनडिस्कवर्ड सा रीजन है जहाँ पर मोस्ट लाइकली आई वॉज वन ऑफ द ओनली पाकिस्तानीज हु हैज़ एवर बीन इन दैट रीजन, क्योंकि ये बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, बहुत दूर है। लेकिन डिस्कनेक्टेड होने के बावजूद जो मुझे चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मुझे लगा कि यार ये बिल्कुल दूरदराज का इलाका है, ये तो शायद यू नो हुंजा टाइप का होगा इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बट सर वहाँ पर अगेन लाइक आई सेड रशिया की डेवलपमेंट इज़ ऑन अनदर लेवल। ये कंट्री है जहाँ पर सेंक्शंस लगी हुई हैं, जहाँ पर यू नो अपेरेंटली उनका सोवियत टाइम के ऊपर उनको खाना नहीं होता था उनके पास और बहुत बुरे हालात थे। वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा है, जो डेवलपमेंट देखी है, जो ओवरऑल क्योंकि उन्होंने हमें बहुत डीपली सब कुछ एक्सप्लोर करवाया, उन्होंने अपने स्कूल्स दिखाए, उन्होंने अपने ग्रोसरी स्टोर्स दिखाए, उन्होंने अपना यू नो आर्ट एंड कल्चर सेंटर्स दिखाए। वो हमें एक दिन लेकर गए एक टूरिस्ट रिजॉर्ट में जहाँ पर स्कीइंग हो रही थी और बहुत सारी इस तरह की विंटर स्पोर्ट्स हो रही थी। वो उन्होंने हमें अपनी ट्रेनों में बिठाया क्योंकि हम डिफरेंट शहरों में जब ट्रैवल कर रहे थे तो हम 8-8, 15-15 इनफैक्ट एक तो मेरा ट्रिप था 36 घंटे मैंने ट्रेन में गुजारे, लेकिन बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन्स, शावर्स ट्रेन के अंदर, गर्म पानी, टेम्परेचर कंट्रोल्ड, इट वॉज फिनोमिनल. लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज रशिया बहुत आगे है, और बड़ा मतलब मैं बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ था बेस्ड ऑन व्हाट आई हैड हर्ड अबाउट रशिया और जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया. इंतहा से ज़्यादा अच्छे लोग सर, इंतहा से ज़्यादा अच्छे लोग लिटरली, और बहुत जेन्युइनली अच्छे लोग. ये नहीं कि बस आपके मुंह पे जो है ना वो आपको हेलो हाय कर दें, जेन्युइनली अच्छे लोग, तमीज़ के लोग, सिंपल लोग, वो मुझे वहाँ पे मिले. सो द सेकंड लेग वाज द रीजनल प्रोग्राम विच अगेन वाज वेरी इंसाइटफुल. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अंडरस्टैंड करने को मिला. बट ओवरऑल अगर मैं इसको रैप अप करूँ तो मेरी एक जो मेजर लर्निंग थी वो ये थी कि मैं अपने ना जो एग्जिस्टिंग बबल है अपने दिमाग का, उससे मैंने बाहर निकलना है. मैंने अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, इंग्लैंड, इससे ज़रा बाहर निकलना है. मैंने दुनिया को अगर एक्सप्लोर करना है तो मुझे साउथ अमेरिका को देखना है. ब्राज़ील क्या सोच रहा है, ब्राज़ील आपको मैं बताऊं, मुझे ब्राज़ीलियन से बड़ी मेरी सलाम दुआ हुई और बड़े दोस्त भी बने मेरे वहां से. ब्राज़ील जिसको मैं कभी खाते में ही नहीं लाता, वो यूरोप से बड़ा, पूरे यूरोप को आप इकट्ठा करें उससे बड़ा मुल्क है. उनकी ठीक ठाक बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक ठाक बड़ा GDP है, वो एक ग्रोइंग पावर है जिसको हम कभी सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि अगेन हमारा एक लैंग्वेज का बैरियर है और वो इतना दूर पड़ता है साउथ अमेरिका में कि हम अमेरिकाज की बात करते हैं तो हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, हम साउथ अमेरिका को तो खाते भी नहीं लाते. बट उसके साथ आई वांट टू गो लुक एट अफ्रीका. अफ्रीका में क्या हो रहा है, अफ्रीका में बहुत मेजर जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रही हैं. और मुझे सरप्राइजिंग इस वजह से ये बात लगी बिकॉज जब मैंने ब्राज़ीलियन से या मैंने अफ्रीकन से बात की तो उनको सब पता था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है. मतलब बहुत सारे लोगों को पता था, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड. और उन्होंने क्या बोला वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, आई मीन मैं आपको बताऊंगा तो फिर मुझे लोग कहेंगे, मुझे एक सर्टन वर्ड बोलना शुरू कर देंगे, मुझे पॉलिटिकली मार पड़ेगी. बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दैट आई मेट देयर, वो अगर पाकिस्तान को देख रहे थे तो उनकी सिंपथीज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक पर्टिकुलर साइड को थी. वो कौन सी थी वो आप खुद समझदार हैं. बट नॉनदलेस जब मैंने देखा कि उन लोगों को पाकिस्तान के बारे में इतना पता है तो मैंने उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया कि उनकी कंट्रीज़ में क्या हो रहा है. और वहाँ पर बड़े फैसिनेटिंग चेंजेस हो रही थी. जिस तरीके से अगर मैं नॉर्थन अफ्रीका की बात करूँ, माली में, नाइजर में इनके रिप्रेजेंटेशन आई हुई थी तो पता लगा कि जी वहाँ पर रिसेंटली एक कंट्री ने अमेरिकन को बाहर निकाला है, दूसरी कंट्रीज़ ने फ्रेंच को बाहर निकाला है. वो लोग जो है वो अब रिजेक्ट कर रहे हैं यू नो यूरोपियन कलोनियलिज्म को और वो अपनी सॉवरेनिटी ले रहे हैं. और वहाँ पर रिजीम चेंजेस भी हो रही हैं, वहाँ पर एक सर्टन कंसोलिडेशन भी हो रही है, एक नए ब्लॉक्स भी बन रहे हैं. तो मुझे नज़र आया कि यार इस वक्त अगर मैंने प्रोजेक्ट करना है कि 10 साल बाद की दुनिया कैसी होगी, अगर मैंने समझना है कि पाकिस्तान 10 साल बाद का कैसे होगा, हम और सिर्फ जियो पॉलिटिक्स नहीं देखें, जियो पॉलिटिक्स की इंप्लीकेशन जियो इकोनॉमिक्स पे होती हैं और जियो इकोनॉमिक्स की इंप्लीकेशन आपकी और मेरी डेली लाइफ्स पे होती हैं. 10 साल बाद बिजनेस क्या हो रहा होगा, 10 साल बाद एक्सपोर्ट क्या चीज़ हो रही होगी, हम क्या एक्सपोर्ट अमेरिका को कर रहे होंगे या हम सेंट्रल एशिया को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, क्या सेंट्रल एशिया में एक्सपोर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, यू नो क्या कनेक्टिविटीज़ होंगी जिसके तहत हमारे लोग शायद ट्रैवल करने के लिए इंग्लैंड नहीं जा रहे होंगे, वो अफ्रीका जा रहे होंगे या वो साउथ अमेरिका जा रहे होंगे, या चलो इतना दूर नहीं जा रहे तो वो सेंट्रल एशिया जा रहे होंगे, वो ताजिकिस्तान जा रहे होंगे, वो अज़रबैजान जा रहे होंगे. तो ये जो चेंजेस हैं इनको समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम वाइडर दुनिया को देखें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान और हम समझें कि आने वाले वक्त में क्या ऐसी चेंजेस हैं जो कि पोटेंशियली हमें अफेक्ट कर सकती हैं. विच इज़ वाई नेक्स्ट मंडे से तकरीबन कोई 6 या 8 एपिसोड्स की सीरीज़ मैं करूँगा एक्सक्लूसिवली ऑन जियो पॉलिटिक्स, यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री के 1940s से लेके आज तक क्या ऐसे मेजर चेंजेस आए और उन चेंजेस ने पाकिस्तान को किस तरह इम्पैक्ट किया और उन चेंजेस से सीख कर हम क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या चेंजेस आ रहे हैं जिससे पाकिस्तान की सिमत पोटेंशियली अच्छे या बुरी तरफ बदल सकती है. अच्छा, अब जब मैं रशिया में था तो वहाँ पर मुझे DM आया 2-3 लोगों का. उन्होंने कहा आप रशिया पहुँच गए, वहाँ पे तो देखें जी वो तो जंग कर रहे हैं, वो कितने बड़े जालिम जाबिर लोग हैं और बड़ा जो है ना यूक्रेन के साथ ज्यादती हो रही है. तो पहला तो इसमें मेरी थॉट इसमें ये थी कि देखें मुझे पर्सनली नहीं पता कि रशिया और यूक्रेन में क्या हो रहा है. ऑनेस्टली मुझे नहीं पता. क्यों? क्योंकि जो मुझे जनरली प्रिवेलिंग नैरेटिव मिल रहा है वो मुझे वेस्टर्न सोर्सेज से मिल रहा है. मुझे पता है कि वेस्टर्न सोर्सेज जो हैं वो बहुत चूना लगाती हैं और बहुत आपको घोल मिला के चीज़ें बताती हैं. पर्टिकुलरली जब मैं इसराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट को देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि वहाँ पर वेस्टर्न मीडिया उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कवर कर रहा है. दूसरा, अगर मुझे रशियन साइड से कुछ ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव भी मिलता है तो वो भी रशियन पर्सपेक्टिव है, वो कोई न्यूट्रल पर्सपेक्टिव तो नहीं है. तो चीज़ों को जब आपने समझना है तो आपने इन द थिक ऑफ इट जाना है और आपने समझना है. और उसका तरीका यही है कि जहाँ पे भी आपको एक्सेस मिल रहा है, वो मुझे आज रशिया में एक्सेस मिला, मैं रशिया चला गया, कल को मुझे यूरोप में एक्सेस मिलेगा, मैं यूरोप चला जाऊँगा, मुझे अमेरिका में एक्सेस मिलेगा, मैं अमेरिका जाऊँगा. मुझे वो तमाम जगहें जहाँ पर सीखने का मौका मिलता है वहाँ से जाके मैं सीखता हूँ. एंड सो यू नो रशिया वॉज सुप्रीमली इंसाइटफुल. मुझे ग्लोबल साउथ का नैरेटिव पता लगा, मुझे रशिया का नैरेटिव पता लगा, मुझे पता लगा कि यार जो दूसरा कैंप इमर्ज कर रहा है दुनिया का, उनकी क्या थॉट प्रोसेस हैं, उनके नारे क्या हैं, वो किन चीज़ों के पीछे पूरी दुनिया को इकट्ठा कर रहे हैं. और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आज सुनने को मिली हैं वो आपको वाइडली अब लेफ्ट राइट सुनने को मिलेंगी। तो वो चीज़ें मैं अब बेहतर तरीके से ना सिर्फ कवर कर सकता हूँ बल्कि उनको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ और मैं आगे आप तक भी पहुँचा सकता हूँ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने आप को ना दड़बों में ना बंद करें। हमें अगर सीखने का अपॉर्चुनिटी मिले, हाँ ये ज़रूर है कि यार आप ब्रेन वॉश ना हो जाएं, आप ब्लाइंड ना हो जाएं, आप किसी के प्रोपेगेंडा में ना आ जाएं और आप आंखें बंद ना कर लें, बट ये याद रखना ज़रूरी है कि प्रोपेगेंडा हर कोई करता है। हर कंट्री, हर पावर जो कि एक दुनिया में अपनी पोजीशन रखना चाहती है वो प्रोपेगेंडा करती है। इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बात नहीं है। आप अगर एज अ रियलिस्ट इस बात को समझ जाएं तो आपको समझ आ जाएगी आपके अमेरिका के फुल प्राइड की जो फ्री की स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसमें वो कहते हैं कि यार आपके बच्चे आए और आके पढ़ें और पढ़ के उन्होंने 5 साल पाकिस्तान में रहना है, वो कोई अल्लाह वास्ते तो नहीं आपको दे रहे, वो भी सॉफ्ट पावर की एक्सरसाइज है। वो अपने कल्चर को एक्सपोर्ट करते हैं इसके तहत, वो आपको मेक श्योर करते हैं कि उन लोगों को लेकर आएँ और उनको अमेरिका दिखाएं और अमेरिका का ऐसा एक्सपीरियंस कराएं जिसमें वो अमेरिका के फैंस होकर वापस जाएं एंड दे बिकम द लीडिंग प्रो अमेरिका वॉइसेस इन पाकिस्तान और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये पूरी दुनिया करती है। अगर रशिया मैं यूक्रेन वॉर की वजह से ना जाऊं तो मैं क्या फिर अमेरिका जाना छोड़ दूं कि यार अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में जंगें करता फिरता है। तो जुल्म और ज्यादती I feel like हर कोई करता है। मैं personally as an objective student I would like to go into any place जहाँ पर learning की opportunity है। इसी breath में I'm going to Balochistan as well क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का future जो है वो बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा interlinked है, increasingly interlinked है। पिछले 75 साल में हमने बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, हमने बलूचिस्तान से बस गैस निकाली और ज़्यादा उसको खाते में नहीं लेकर आए। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मे बी आई डू अ वीडियो, अ डिटेल वीडियो ऑन व्हाई बलूचिस्तान इज़ द वे दैट इट इज़। आने वाले वक्त में इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में बलूचिस्तान का एक बहुत अहम किरदार होगा जिसके लिए मैं अगले महीने जा रहा हूँ। आई विल बी स्पेंडिंग अराउंड 2 to 3 weeks इन बलूचिस्तान एंड आई विल बी अंडरस्टैंडिंग कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, वहाँ पर थ्रेट्स क्या हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या मसाइल हैं और वहाँ का इकोसिस्टम ओवरऑल है कैसा। सो आई होप टू लर्न फ्रॉम देयर एज वेल एंड आई होप टू शेयर दैट सेम लर्निंग विद यू गाइस एज वेल। बट एनीवेज यहाँ पर मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। दिस वॉज लार्जली जस्ट एन अपडेट वीडियो क्योंकि मैं गायब था तो मैंने सोचा मैं आके आप लोगों से बात कर लूँ, आपको बता दूँ कि मैं किधर था, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है और थोड़ा सा आपको आने वाले वक्त के बारे में बता दूं कि अगली 8, 6, 8, 10 वीडियोस किस तरफ होंगी, किस डायरेक्शन में होंगी और वो वीडियोस क्यों इंपॉर्टेंट हैं, पर्टिकुलरली जियोपॉलिटिक्स। आप अगर पाकिस्तानी हैं, आप कह रहे हैं यार ये क्या हमें बता रहे हैं अमरीका और रशिया के फड्डे और चाइना के मसले, तो आप समझ लें कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आपको बता रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान पर इम्पैक्ट इन तमाम चीज़ों का होगा, आपकी ज़िंदगियों पर इम्पैक्ट इन तमाम चीज़ों का होगा। आप आने वाले वक्त में पैसे किस तरह कमाएंगे, आप बिज़नेस क्या करेंगे, आपके बच्चे किधर पढ़ने जाएंगे, आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी, हर चीज़ इम्पैक्ट करती है बेस्ड ऑन कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, दुनिया में जो बड़ा बाबू है वो कौन है आजकल, दुनिया के हालात कैसे हैं, वो तमाम चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। सो वी गोना गो डाइव डीप इनटू दैट स्टार्टिंग नेक्स्ट मंडे, जिसमें मंडे और वेंसडेज़ को मेरी ये वाली एपिसोड्स आ रही होंगी और फ्राइडेज़ को ओकेजनली, जैसा कि इस फ्राइडे को मैं एक एपिसोड निकाल रहा हूँ और फ्राइडेज़ को मैंने रखा हुआ है एज मोर ऑफ एन इंटरैक्टिव डे, अ क्रिएटिव डे। सो उसमें जैसा कि आपको पता है कि TBT अभी मैंने फिल वक्त पॉज किया हुआ है, मैं उसको रीइमेजिन कर रहा हूँ, रीडिज़ाइन कर रहा हूँ और प्रॉबली आई वुड से कि सितंबर अक्टूबर तक मैं उसको रीलॉन्च करूँगा। अभी तो कोई सीन नहीं है बट अगर दरमियान में कोई इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन आ रही है तो वो मैं रिकॉर्ड करके आई विल बी पोस्टिंग दोज ऑन फ्राइडेज़, जैसा कि इस फ्राइडे को एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है दैट आई विल बी रिलीजिंग। बट उसी के साथ साथ जहाँ पर मेरे पास पॉडकास्ट नहीं होंगी वहाँ पर आई विल बी डूइंग क्वेश्चन एंड आंसर्स, सो इट विल बी अ मोर इंटरैक्टिव वीडियो विद यू गाइस, जहाँ पर आप मुझे कोई सवाल अगर आपके हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं एंड आई विल बी रीडिंग दोज एंड आंसरिंग दोज इन दैट वीडियो। सो अगर आपके पास कोई सवाल है, चाहे वो इकोनॉमिक्स के ऊपर हो, पॉलिटिक्स के ऊपर हो, पॉलिटिक्स के ऊपर मार पड़ती है तो उसका देख लीजिएगा, बट जियो पॉलिटिक्स के ऊपर हो, दुनिया भर में क्या हो रहा है या जनरली कोई भी आपका सवाल हो, पर्सनल कोई सवाल हो, मुझे आप ईमेल कर दें thoughtbehindthings@gmail.com। ईमेल एड्रेस यहाँ पर अपीयर हो रहा होगा तो आप उस पर ईमेल करें। जो नेक्स्ट वीक की फ्राइडे की एपिसोड है आई एम गोना बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस इन दैट एपिसोड। बट एनीवेज यहाँ पर मैं खत्म करूंगा। दिस वाज सैयद मुजम्मिल हसन जैदी, यू आर वाचिंग दिल की बात। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।